फिर इसके बाद अगली दुआ क्या है? जिसे ईमान में शक हो जाए तो वो क्या करे? क्या ईमान में भी शक होता है? जी हो जाता है, तो क्या करें? नंबर एक आउज़ु बिल्ला पढ़िए, यानी अल्लाह की पनाह मांगिए इस बात से कि मेरे अंदर शक आए। फिर इस चीज़ या काम से रुक जाए जिसमें शक हो, ये बुखारी की रिवायत है 3276। फिर इसके बाद ये कलिमात कहे, आमंतु बिल्लाही व रसूलिही, मैं अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाया। ये जो छोटा सा टुकड़ा है दुआ का, ये हमें सही मुस्लिम की हदीस नंबर 134 134 से मिलता है। और इसी तरह से फिर अगर इससे भी दिल का शक ना दूर हो और इफाका ना हो कह लीजिए, तो फिर इन कलेमात के बाद अल्लाह ताला का ये फरमान पढ़े, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वल बातिन वहुव बिकुल्ली शयइन अलीम। सूरत अल हदीद की इब्तदाई आयात हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको किफ़ायत करेगा। शक कब आता है? पहली बात है कि शैतान चूँकि वसवसे डालता है, तो वो तो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में भी शक डाल देता है। दूसरी बातों को तो पीछे कीजिए। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर ऐसे वसवसों से बचाता है। अल्लाह की पनाह मांगने का मतलब ही यह है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जब अल्लाह की पनाह में आएंगे तो शैतान खुद ही दूर होगा। फिर वो काम जो आप कर रहे हैं इसमें कोई शक है? कई दफ़ा ऐसा होता है, दा मा युरीबिक इला मा ला युरीबिक, उसको छोड़ दो जिसमें शक हो और जिसमें शक नहीं उसको कर लो। आप खुद देखेंगे कि जब आप हक पे पहुंच जाते हैं ना, सच के पास होते हैं ना, तो आपके दिल से सब इज़्तिराब ख़त्म होते हैं। और फिर आमंतु बिल्लाही व रसूलिही से क्या मुराद है? कि फिर अल्लाह पर ईमान और रसूल पर ईमान है, गोया के वो मुझे शक से दूर करके ऐसी चीज़ की तरफ गाइड कर दे जिसमें मेरा दिल मुतमईन हो जाए। और ये जो अल्लाह ताला के बारे में अलव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु, ये सिफात अल्लाह की, जो अल्लाह के नाम है, इनका मांगना पढ़ना और फिर इसके बाद अल्लाह का अलीम होना बताया गया, तो इससे फिर दिल से शक निकल जाता है। जहाँ ख़जाना होता है चोर वहीं आता है, जहाँ ईमान का ख़जाना होता है शैतान वहीं आकर इस किस्म की हरकतें करता है। तो आइए ये सारे कलेमात दोहरा लेते हैं।
آمنت بالله ورسله آمنت بالله ورسله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم آمنت بالله ورسله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم।
जी, इसके बाद आप देखिए कि अब ये छोटी छोटी जो दुआएं हैं, ये हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारा बेखौफ हो जाना बेकार वसवसों से, उसके लिए भी ये बहुत ही खूबसूरत दुआएं। इसी तरह आप देखिए कि एक चीज़ जिससे इंसान को हमेशा डरना चाहिए अपने मामले में भी, और वो क्या है? कि कहीं मैं जानते बूझते शिर्क का शिकार ना हो जाऊँ, दानिस्ता और नादानिस्ता। क्योंकि शिर्क बारीक है, काली रात में स्याह पहाड़ पे चींटी नज़र नहीं आती, इसी तरह शिर्क भी नहीं नज़र आता। शिर्क खफी भी है, शिर्क जली भी है। इसके लिए तो आपको वाकई कुरान पाक को समझ के पढ़ना होगा। सिर्फ सूरत अल अनाम और इसी तरह की चंद सूरतें पढ़ लें तो तौहीद और शिर्क का फ़र्क समझ आ जाता है। और एक बड़ी खूबसूरत दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई कि अगर आपको ज़रा सा भी अपने बारे में कि मेरे से कहीं जानते बूझते में कोई शिरकिया काम तो नहीं हो रहा, तो ये दुआ आज से मांगनी और याद करनी शुरू कर दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना आलमु व अस्तग़फिरुका लिमा ला आलमु। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं किसी को तेरा शरीक ठहराऊँ जबकि मैं जानता भी हूँ, और मैं तुझसे इन गलतियों की बख्शिश मांगता हूँ जिन्हें मैं नहीं जानता। कितना इंसान को इस बात पर यकीन है कि मेरा रब मुझसे ज़्यादा जानता है मुझे और मेरे कामों को। और रिवायत है ये शरह सही अल अदबुल मुफरद अल्बानी साहब की, हदीस नंबर 551 है। तो ये दुआ भी आपको इंशाल्लाह गैर महसूस तरीके से शिर्क से दूर करेगी। और इस मज़मून को सीखिए, इसके बारे में इल्म लेना बहुत ज़रूरी है। तफहीम व सुन्ना सीरीज़ की पहली ही किताब है तौहीद का बयान, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज़ में करवाई जाती है। सुहेलुल जन्ना कोर्स का मस्ट हिस्सा है वो, क्योंकि जब तक हमें शिर्क का ही नहीं पता बाकी चीज़ें क्या है। और याद रखिए कि शिर्क तो एक कतरा जहर की तरह अगर किसी चीज़ में चला गया तो सब इबादत ज़ाया हो जाएंगी। शिर्क के बारे में कुरान में सबसे ज़्यादा आयात हैं, ये मज़मून बहुत वसीह है। तो लिहाजा इस शऊर के साथ ये दुआएं मांगेंगे कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के शिर्क से महफूज रखे।
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم.
आपके दिल में शिर्क का खौफ होना चाहिए। आपको ऐसे महसूस हो कि एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और मुझे उससे ख़ुद को बचाना है। और शिर्क के बारे में हमारे जहनों में कोई इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो कहते हैं कि एक मस्जिद में एक इमाम साहब थे, तो वो जब भी दर्स देते बात करते तो शिर्क के मौजू पे करते। तो लोगों ने थोड़ा सा माइंड किया कि आप इसी मौजू पे हमेशा बातें करते हैं। खैर, उन तक बात गई। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन वो आए और उन्होंने कहा कि देखो, आज मैंने बाहर कितना बुरा मंज़र देखा। मैं एक जगह से गुज़रा तो कुछ लोग एक दरख्त की तरफ सजदा कर रहे थे और उससे दुआएं मांग रहे थे। लोगों ने उसकी बात सुनी, थोड़ा बहुत रिएक्शन शो किया और फिर बिखर गए। अगले दिन फिर आकर उसने कहा, देखो मैं फलां जगह आज गया तो वहाँ एक कब्र के ऊपर लोग सजदा कर रहे थे। लोगों ने कोई ख़ास एक्शन ना लिया। इसी तरह तीसरे भी दिन उसने कुछ ऐसी ही बात बताई। लेकिन जब चौथे दिन आकर उसने कहा कि आज मैंने बहुत ही बुरा मंज़र देखा, एक लड़का था तो वो लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, उसको तंग कर रहा था। ये बात सुनने की देर थी तो लोग गुस्से में आ गए, एकदम कहा, बताओ किधर है, कौन है, हम जाकर इसको पूछें। तो फिर उस पर उसने कहा कि देखो, 3 दिन से मैं तुम्हें शिर्क से मुतल्लिक बातें बता रहा था और तुमने इतना ज़्यादा बुरा नहीं मनाया, जबकि आज मैंने तुम्हें एक लड़के का लड़की को छेड़ना जो बहुत ही बुरी बात है उसकी बात की तो तुम एकदम गुस्से में आ गए। इसका मतलब कि अभी तुम्हें तौहीद और शिर्क पे मज़ीद बात सुनने की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें इस पे मज़ीद बताऊँगा। ये जोक है, ये रियलिटी है, लेकिन बात सच है। आज हमारे यहाँ शिरकिया मज़ाहिर को देख कर वहाँ से गुज़र के जाते आते, और ये तो एक ज़ाहरी शिरक के मज़ाहिर है ना, दूसरे शिरक को भी देख कर, हमारी रस्मों में शिरक, हमारे गानों में शिरक, हमारी फिल्मों में शिरक, हमारी कवालियों में शिरक, हमारी नातों में शिरक है, और हम बड़े झूम झाम के सवाब के इरादों और मोहब्बत के नाम पे उस काम को कर रहे होते हैं। तो इस शौर के साथ एक बार फिर मांगिए इसको।
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم.
सुमामीन। फिर इसके बाद देखिए कि गुनाह कर बैठे तो क्या कहे और क्या करे, कभी हुआ हमसे गुनाह, कब नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। लेकिन कितने प्यारी बातें अल्लाह के नबी की कि वो हमें गुनाह करके भी दुआ मांगने की तलकीन कर रहे हैं। तो क्या किया जाएगा, जो शख्स कोई गुनाह करे, मुराद ये कि उससे गुनाह हो जाए, ये भी लिखिए, गुनाह किया नहीं जाता, कभी कभी हो जाता है बस। तो अच्छी तरह वुजू करे, फिर खड़ा होकर 2 रकत नमाज पढ़े, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। ये अबू दाऊद की रिवायत है 1521। लेकिन शर्त है, और वो क्या कि खालिस तौबा हो। तो खालिस तौबा क्या होती है, खालिस तौबा की 4 शराइत लिखिएगा। जिस गुनाह से तौबा कर रहा है, पहले इसे फौरन तर्क कर दे, इस पर सख्त नदामत का इजहार करे, फिर आइंदा इसे ना करने का पक्का इरादा करे, और चौथी बात कि अगर इसका ताल्लुक बंदों के हकूक से है तो इसकी तल्लाफी करे, यानी कंपनसेट करे। और फिर आप देखेंगे कि जो भी इस तरह करेगा, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देंगे और फिर अल्लाह ताला उसे बचाएगा। अब आप देखिए कि इसमें आपको कोई जाहिर दुआ नहीं दिख रही, लेकिन ये 4 काम तो करने हैं। अब ये जो दुआ है, ये 2 रकत है, ये माफ़ी के हैं, और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए नवाफिल पढ़ने चाहिए, या तौबा ही की किस्म है, एक ये कह लीजिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि शैतान कब भागता है। नंबर 1, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगी जाए तब भागता है, और ये रिवायत हमारे पास मौजूद है अबू दाऊद में 775, और सूरत मोमिनून के आखिर में भी है 97-98 आयत में। और ये सारी चीज़ें जो भी हम कहते पढ़ते सुनते हैं ना, इनके ऊपर हमारा ईमान है कि जब अल्लाह ने और उसके रसूल ने बता दी तो इसी में खैर है। फिर दूसरी बार शैतान कब भागता है, जब अजान हो। फिर मसनून अस्कार करने से शैतान भाग जाता है, और कुरान पाक की तिलावत करने से शैतान भागता है। ये अजान की बात के अजान सुन के शैतान भागता है, तो इसकी रिवायत सही बुखारी में है 608। और अपने घरों में अजान का अहतमाम भी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, बिला शुबा शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरत बकरा की तिलावत की जाए। जी, सूरत बकरा की तिलावत करने से भी शैतान भागता है, सही मुस्लिम की रिवायत है 780 की। ख़ास तौर पे अगर आप पूरी सूरत भी पढ़ा करें, और कभी मौका मिले, शुरू की फिर जहाँ तक पढ़ी फिर अगले दिन पढ़ें, यानी मुस्तकिल अहतमाम रखिए अपने घरों में सूरत बकरा पढ़ने का। और ख़ास तौर पे फिर जो आखिरी दो आयतें हैं, आमन रसूल वाली और लिल्लाही माफिस समावात, ये आयतें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसी तरह जो चीज़ें शैतान को दूर करती हैं, उनमें से सुबह शाम की दुआएं, घर में दाखिल होने और घर से बाहर निकलने की दुआएं, मस्जिद में दाखिल होने और मस्जिद से बाहर निकलने वक्त की दुआएं, और दीगर तमाम दुआएं शामिल हैं जो शरीयत मुतहरा से साबित हैं। मसलन सोते वक्त आयतुल कुर्सी और सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ना। फिर जो शख्स 100 दफ़ा ये दुआ पढ़ता है, वो तमाम दिन शैतान के शर से महफूज रहता है। सही बुखारी की रिवायत है 3293। और दुआ क्या है, बहुत ही प्यारी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाहत है, और हर तारीफ उसी के लिए है, और वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। आपने पहले भी ये कलिमात सीखे, सुबह शाम की दुआओं में भी थे। आइए इसको मोहब्बत से पढ़ते हैं, इस दुआ के साथ, कि शैतान हमसे दूर चला जाए।
ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
आप देखिए कि अल्लाह का नाम कितना बड़ा है ना, अल्लाह इससे भी बड़ा है। जो कुछ हम उसके बारे में पढ़ते और सुनते हैं।